इशिका के बेपरवाही की वजह से रोहन उससे इस हद तक गुस्सा हो गया था कि उसने उसे काम तक से निकाल दिया था। वहीं लक्ष्य ने जब इशिका के भेजे हुए पूरे मेल को समझ लिया था तो वो जोर से एक्साइटेड होकर चिल्लाया। सभी उसकी तरफ दौड़ कर गए। रोहन को देखते ही लक्ष्य खुश होकर बोला, उसने ये कर दिखाया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो जो इस तरह चिल्ला रहे हो, रोहन ने सिर हिलाकर कहा। टीम के बाकी मेंबर्स भी रोहन की तरह लक्ष्य को पागल समझ रहे थे। रोहन की असिस्टेंट सानिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लक्ष्य, हम सभी लैब में काम कर रहे थे, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत थी और तुम यहाँ पर बैठकर पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। रोहन ने लक्ष्य की तरफ देखकर सख्ती से पूछा, तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? लक्ष्य ने हाँ में सिर हिला दिया। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके बाद लक्ष्य ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने वर्क स्टेशन पर लेकर गया। उसने लैपटॉप पर उसे दिखाते हुए कहा, देखा, हमने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। हमें लगा था मेन इश्यू कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग से सॉल्व होगा और इस चक्कर में हमने आसान तरीकों पर ध्यान नहीं दिया। ये देखो, ये कितना आसान था और हम इसे नहीं कर पाए। इशिका ने मेल में सब कुछ समझाया था, उस हिसाब से लक्ष्य ने पूरी प्रॉब्लम को उनके सामने खोलकर रख दिया था। सब कोई हैरानी से लक्ष्य की तरफ देख रहे थे। हर कोई अब लक्ष्य की तारीफ कर रहा था। सानिया ने कहा, तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम इसे कर पाओगे, तुमने कमाल कर दिया, अब रोहन सर को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हमने लक्ष्य को काफी अंडर एस्टिमेट किया, ब्रिलियंट लक्ष्य, एक और एम्प्लॉय ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। रोहन अभी भी अविश्वास से लैपटॉप की तरफ देख रहा था। अचानक उसने नोटिस किया कि वो मेल इशिका ने भेजा था। रोहन ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया है लक्ष्य? वो अभी भी कंफर्म करना चाहता था, ये मुझे इशिका ने भेजा था, उसने फ्राइडे को ही इसे सॉल्व कर दिया था। एक्चुअली मुझे वीकेंड होने की वजह से घर जाने की जल्दी थी तो मैंने इसे चेक नहीं किया, लक्ष्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। लक्ष्य के बताते ही सब कोई बाहर की तरफ देखने लगे। रोहन ने थोड़ी देर पहले उसे काम से निकाला था। वो तेज कदमों से चलते हुए बाहर की तरफ गया। उसके पीछे बाकी टीम मेंबर्स भी आ रहे थे। इशिका अभी भी वहीं पर हाथ बांधे खड़ी थी। उन सबके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिस मेन इश्यू को वो पिछले एक महीने से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उसे इशिका ने एक दिन में सॉल्व कर दिया था, जबकि फ्राइडे को ही उसने ज्वाइन किया था। इशिका भी अब पूरे मामले को समझ गई थी। उसने उन सबकी तरफ देखकर कहा, तो क्या ये वो प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप सब लोग इतना परेशान हो रहे थे? ये तो कब की सॉल्व हो चुकी है, फिर आप लोग इतना परेशान क्यों थे? रोहन इशिका के पास आया और उससे पूछा, तुम सच में एक अंडर ग्रेजुएट ही हो ना? हमने यहाँ PhD किया हुआ है और हमसे भी ये नहीं हुआ था। किसी की भी कैपेबिलिटी उसकी डिग्रीज पर डिपेंड नहीं करती है, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, उम्र कम होने की वजह से इशिका पढ़ाई में आगे भले ही ना बढ़ पाई हो, लेकिन इतनी कम उम्र में उसने बिना पढ़े हुए भी काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। शायद इसकी एक वजह ये थी कि आयशा की वजह से उसे कॉलेज में ज़्यादा ध्यान देने का मौका नहीं मिला, तो उसने अपनी स्टडी को साइड में करके अपनी कैपेबिलिटी को निखारने में वक्त दिया था। कुछ देर के लिए वहाँ बिल्कुल चुप्पी छा गई। फिर एक लड़की आगे आई और उसने इशिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने लिफ्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। उस लड़की के पास एक और लड़का आगे आया और इशिका से बोला, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम हमारी मेहनत पर बोनस लेने वाली हो जबकि तुमने कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तीसरा लड़का आगे आकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हमसे कुछ सीखना चाहिए जबकि तुम तो पहले से ही काफ़ी कुछ जानती हो। आई एम रियली सॉरी जो मैंने तुम्हें हम सब के लिए कॉफ़ी लाने जैसा छोटा काम करने को कहा, हम सब ने तुमको काफ़ी कम आँका, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, सानिया ने कहा। वो सभी तुरंत अपनी गलती मानते हुए इशिका से माफ़ी मांग रहे थे। इशिका समझ गई थी कि रिसर्चर्स सुबह से ही काफ़ी परेशान थे, वो सब दिल के बुरे नहीं थे, जो भी हुआ वो उनकी परेशानी की वजह से हुआ था। इशिका ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और काफ़ी हल्के तरीके से कहा, कोई बात नहीं, आपने तो वो सब बातें कही थी लेकिन किसी ने तो यहाँ मुझे काम तक से निकाल दिया था। बोलते हुए इशिका ने रोहन की तरफ देखा जिसने अभी तक सॉरी नहीं कहा था। रोहन ने गहरी सांस ली और इसी तरफ देखते हुए इशिका के सामने आया। रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है मिस सिंघानिया। रोहन ने पहले उसका वेलकम नहीं किया था क्योंकि वो सिफारिश के दम पर वहाँ आई थी और ये रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उसने इशिका की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसका पूरा दिल से स्वागत किया था। सभी इशिका के लिए तालियां बजा रहे थे। अचानक सबकी नज़र दरवाजे पर गई क्योंकि वहाँ से भी तालियों की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने उस तरफ देखा तो उनकी टीम का डायरेक्टर और नक्श उनकी तरफ आ रहे थे। नक्श थोड़ा गुस्से में लग रहा था। डायरेक्टर उनके पास आकर इशिका की तरफ देखते हुए बोला, आजकल के यंगस्टर्स को कम नहीं समझना चाहिए, अब मिस सिंघानिया को ही देख लीजिए, किसे लगा था कि इतनी कम उम्र की लड़की जो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है वो इतने बड़े इश्यू को सॉल्व कर सकती है। इन सब में नक्श इशिका को घूर कर देख रहा था। वो काफ़ी सालों से उसके पीछे था तो इशिका की योग्यताओं को अच्छे से जानता था। नक्श का इशिका से प्यार करने की वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि इशिका इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो एक दिन डॉक्टर मर्चेंट की तरह फेमस होने वाली थी। नक्श ने अपने मन में कहा, फ्यूचर में भले ही इशिका डॉक्टर मर्चेंट के लेवल तक चली जाए पर अभी तो वो डॉक्टर मर्चेंट के आसपास भी नहीं है। ये लड़की इतना परफेक्ट कैसे हो सकती है? ऊपर से मैं इससे शादी भी नहीं कर सकता। इशिका का एक नाजायज औलाद होना जरूरी था क्या? बहुत बुरा लगता है अपने ही प्यार को छोड़ना। नक्श को अफसोस होता था कि इशिका के इतनी परफेक्ट होने के बाद भी वो उससे शादी नहीं कर सकता था। उसने अपनी जलन को मन ही मन दबाया और फिर रोहन की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम लोगों ने ये कर दिखाया, मुझे लगा इसके लिए मुझे डॉक्टर मर्चेंट को परेशान करना होगा। जैसे ही सबने नक्श के मुंह से डॉक्टर मर्चेंट का नाम सुना वो सब हैरान रह गए। डॉक्टर मर्चेंट वहाँ उन सबके आइडियल थे और वो आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। क्या अभी अभी इन्होंने डॉक्टर मर्चेंट का नाम लिया? मेरा सपना है कि मैं एक बार उनसे मिलूं, एक लड़की ने कहा। दूसरी लड़की उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोली, अगर मैं जिंदगी में एक बार डॉक्टर मर्चेंट से मिल लूं तो मेरे लिए वही काफी होगा, फिर मैं पूरी उम्र सिंगल रह सकती हूं। ज्यादातर लोगों को यही गलत फहमी थी कि डॉक्टर मर्चेंट कोई आदमी है। नक्श ने उनकी बातों को सुना तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने रोहन से भौंहें उठाकर कहा, वैसे डॉक्टर मर्चेंट हमारे कॉन्टैक्ट में है तो हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हम इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं, रोहन ने सख्ती से जवाब दिया। बात छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम उनसे जितना काम ले सकते हैं वही काफी है, नक्श ने जवाब दिया।
नक्श जानबूझकर सबके सामने डॉक्टर मर्चेंट का नाम ले रहा था ताकि सब उसके फेवर में आ जाएं। लेकिन वहीं जब इशिका ने उसके मुंह से डॉक्टर मर्चेंट का नाम सुना तो गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। इशिका मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, मैंने आयशा को क्लियरली मना किया था, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? नक्श का कॉन्फिडेंस साफ बता रहा है कि आयशा ने उसे झूठ बोला है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नक्श ने एक बार फिर से सबके सामने कोशिश करते हुए कहा, सोच लो रोहन, आगे भी तुम्हें काम के लिए डॉक्टर मर्चेंट की जरूरत मिलेगी और मैं उनकी हेल्प तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इशिका को मेरी टीम में भेजना होगा, वो मेरी असिस्टेंट बनेगी तो मुझे ज्यादा आसानी होगी काम करने में। नक्श ने सबके सामने जानबूझकर ये शर्त रखी ताकि वो सब रोहन को समझाएं और इशिका के बदले उन्हें डॉक्टर मर्चेंट का गाइडेंस मिले। वैसे भी डॉक्टर मर्चेंट के अंडर वो सब भी काम करना चाहते थे, बदले में उन्हें इशिका को टीम 2 में भेजना था और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। नक्श ने सारा फैसला रोहन पर छोड़ दिया था। इशिका को इन सब में बहुत गुस्सा आ रहा था, नक्श उनकी टीम में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। पूरा फैसला रोहन पर था तो सब कोई उम्मीद से रोहन की तरफ देख रहे थे, वो सब भी डॉक्टर मर्चेंट को चाहते थे। नक्श ने आगे कहा, सोच लो रोहन, इशिका डॉक्टर मर्चेंट के आगे कुछ भी नहीं है, तुम्हारी पूरी टीम का इससे भला हो जाएगा, ये सिर्फ मेरे हाथ में है जो मैं डॉक्टर मर्चेंट को तुम सबके गाइडेंस के लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसने अपना आखिरी हथियार डाल दिया था। रोहन उसके सामने आया और नक्श की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, नहीं। रोहन ने सीधे सीधे ना कर दिया था। इशिका भी हैरान थी, रोहन ने एक बार फिर एक बड़ी कुर्बानी दी थी, वो भी इशिका को नक्श से बचाने के लिए। नक्श इतने से ही हार नहीं मानने वाला था, उसने आगे कहा, तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, हमारी कंपनी में हमेशा वोटिंग चलती है और तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ खड़ी रही है, अपनी टीम मेंबर से भी तो पूछो कि वो क्या चाहते हैं, डॉक्टर मर्चेंट या इशिका सिंघानिया, पूछो उन्हें क्या चाहिए। रोहन ने अपनी टीम की तरफ देखा तो उन सबके चेहरे शांत थे। इशिका इन सब में काफी इरिटेट हो गई थी, उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी ताकि उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन अब उसकी इसी पहचान छुपाने की वजह से लोग गलत फायदा उठा रहे थे। इशिका ने गहरी सांस ली और नक्श के पास जाकर गुस्से में बोली, क्या डॉक्टर मर्चेंट इस बारे में जानते हैं कि तुम उनका नाम लेकर खुलेआम सौदेबाजी कर रहे हो? क्या तुमने मुझसे पूछा इस बारे में और मैं तुमसे क्यों पूछूं? नक्श ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम इन सबसे दूर रहो इशिका, तुम अभी नहीं आई हो और टीम के अंदर के फैसले लेने के काबिल भी नहीं हो, इन्हें सोचने दो, तुम्हारी राय यहाँ मायने नहीं रखती है। नक्श अभी भी बेशर्मी से सौदेबाजी पर तुला हुआ था। और डॉक्टर मर्चेंट का क्या? क्या उनकी राय भी मायने नहीं रखती है? क्या ये सब करने से पहले तुमने उनसे पूछा? इशिका गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ी थी। नक्श हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम डॉक्टर मर्चेंट को जानती हो? वो क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? इशिका ने नक्श की आंखों में देखा और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, लेना देना है, क्योंकि वो मैं हूँ। क्या लगता है इशिका आज एक्सेप्ट कर लेगी कि वही डॉक्टर मर्चेंट है? नक्श का आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पाठ पढ़कर प्लीज समीक्षा किया करो। आपने अभिमन्यु और इशिका के सीन की डिमांड की थी तो मैं उनके सीन ज्यादा लिखने वाली हूँ। रोमांटिक सीन तो अभी बिल्डअप नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बीच में प्यार वाली फीलिंग अभी ग्रो नहीं हुई है। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं।